सिर्फ वो मुसलमान चाहिए जो सिर्फ फर्ज 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 क्या है बस ये बता दें और बाकी से हमारी जान छुड़ा दें, वो सिर्फ इस फिक्र में ना हो बल्कि वो एहसान के लेवल पर आगे बढ़ने की हर वक्त दौड़ में लगे रहें। कहां से आएंगे वो मुसलमान? कोई प्लानिट है? बेहतर है इंसान आखिरत में मजलूम बनकर उठे ताकि अल्लाह की रहमत और जो ज्यादा जोश में आ जाए। तो दूसरा मफहूम इसमें आता है इताअत का मजहर, ये अपनी नेचर को फॉलो करते रहते हैं। अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह बार बार इन चारों ऑब्जेक्ट्स के जरिए जो बात मेंशन करना चाह रहा है वो ये कि ये दिन रात के मोजज़े हमारे सामने हैं, एक वक्त आएगा ये सारे मोजज़े लपेट दिए जाएंगे और फिर किसी इंसान को मोहलत नहीं दी जाएगी। तो लास्ट आर करीब है और जब अभी तो अल्लाह की रहमत बरस रही है, गुनाहगार के ऊपर भी सूरज उतनी ही मुनासिब रोशनी देता है जितनी नेक पर देता है। सूरज का फायदा, चांद का फायदा, दरख्त का फायदा, सितारों का फायदा, हर इंसान को एक जैसा होता है। लेकिन जब उस रहमान ने कयामत अस्साआ कायम कर दी, तब उस रहमान के साथ जो दूसरी सिफत कपल्ड हो जाएगी वो कौन सी होगी? अदल। अभी हम बात कर चुके ना पिछले क्लासेस में, एक दफा कयामत कायम हो गई तो अल्लाह की शान रहमानी के साथ शान अदल आकर मिल जाएगी। मालिकी यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह की शान रहीमी जो है, जो 99 हिस्से हैं बाकी अल्लाह की रहमत के, वो किसके लिए रिजर्व है? मोमिनीन के लिए। अब अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह हमें मोमिनीन में शामिल फरमाए। लेकिन क्या यहां बैठे बैठे आप और मैं मोमिनीन में शामिल हो सकते हैं? यहां आपके सर पे कोई दरख्त लगा है? फर्ज करें आप इसी कुर्सी पर फिक्स हैं, आप हिल नहीं सकते, फ्रोजन, बिल्कुल फ्रीज। आप यहां बैठ के दुआ करती रहे, वो जो इस छत के उधर बाहर दरख्त लगा है, जो उस पर कैरी लगी है, अल्लाह वो मेरे मुंह में गिर जाए आके। खाली दुआ मांगने से मोमिन नहीं बनते। मोमिन कैसे बनते हैं? जिसको मोहब्बत होती है उसका अमल बताता है कि उसको मोहब्बत है, जिसका ईमान का दावा होता है उसका अमल रिफ्लेक्ट और ट्रांसलेट करता है उस ईमान के दावे को। और यही चीज हमें बार बार समझाई जा रही है। अन-नजम में दो मीनिंग्स आते हैं अरबी जुबान के पॉइंट ऑफ व्यू से। नजम एक ही नाम आपको मिलेगा लेकिन इसकी दो कॉनोटेशंस आती हैं। जनरल कॉनोटेशन नजम की जो हम जानते हैं वो है जिसको आप कहती हैं सितारे, स्टार्स। तो स्टार्स अल्लाह के सामने फरमा बरदारी करते हैं, स्टार्स कयामत के दिन जो हैं वो गिरा दिए जाएंगे। जब आप नजम को सितारा और शजर को दरख्त लेते हैं तो मफहूम इसका मुफस्सरीन बताते हैं नजम इज द हाईएस्ट एंड दरख्त इज द लोएस्ट, इसके दरमियान में जो कुछ है वो सब रब को सजदा करता है सिवाय दो मखलूकात के जो बार बार ट्रांसग्रेस करते हैं। तमाम मखलूकात, तमाम मखलूकात, चाहे जो आपको और मुझे अपने सर की आंखों से नजर आती हैं, चाहे वो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी इज मजे का सब्जेक्ट। आपको ऐसे ऐसे उसके अंदर मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, आंखों से नजर नहीं आते, जो आपके बाज़ औक़ात पानी के अंदर मुख्तलिफ जर्म्स होते हैं, आप उनकी शक्लें देखें तो आपको, आप सुभान अल्लाह भी कहते हैं और आपको खौफ भी आता है और आप सोचते हैं अल्लाह आपकी शान रहमानी के हमें ये मखलूकात आंखों से नजर नहीं आते। कभी जब, अब रमजान में मैं इतने सारे काम नहीं कह रही आपसे, लिख लीजिए रमजान के बाद माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा और जरा देखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह के होते हैं और कितनी कितनी शेप्स के होते हैं और कितने भयानक होते हैं। क्या अगर हमें आंखों से नजर आने लग जाए, बाज़ औक़ात हो सकता है हम पानी में पी भी जाते हैं, वो पानी जो आप बगैर सोचे समझे बगैर बॉयल किए हुए पी जाते हैं कहीं से भी लेके, यू नेवर नो कितना कुछ पी गए पेट में, नजर आ रहे हो ग्लास में तो पी सकते हैं, सोचे। तो ये अल्लाह की शान रहमानी है। तो अल्लाह कहता है कि सितारे जो टॉप पर हैं और दरख्त जो लोवेस्ट हैं, ये दोनों भी और जो कुछ इनके दरम्यान है ये सब सजदा करते हैं। नजम का एक मफहूम होता है वो वेजिटेशन जिसका स्टॉक नहीं होता, जैसे पालक, लेटस, स्पिनच, वो वेजिटेशन जिसका स्टॉक नहीं होता है, जिसका स्टेम नहीं होता है। जी, बाज अरबी जुबान में बाज वाइन्स आते हैं बेल, उनको भी नज्म कहा जाता है। सो जब इस मीनिंग के अंदर नज्म को लिया जाता है वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पौधे जो स्टॉकलेस होते हैं, जिनके स्टेम नहीं होते हैं, तो कहा जाता है कि दरख्त अब हाईएस्ट हो गया, और वो जो नीचे घास फूस लगी हुई है पालक और जो स्टॉकलेस लगे हुए हैं वो लोएस्ट हो गए। तो सब के सब जितनी मखलूकात हैं वो सब अल्लाह को सजदा करते हैं, वो सब अल्लाह की इबादत को फॉलो करते हैं, वो सब अल्लाह की कांस्टेंट तस्बीह करते हैं। देखो और इन्फर करो, एक से एक मुजजा नजर आएगा, एक से एक अल्लाह की शान और नई से नई एंटिटी नजर आएगी। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में आता है, सब मखलूकात अल्लाह की तस्वी करते हैं, तो सब बिहु लहु समावा तो सब सब उ वल अर्द, तो सब बिहु लहु समावा तो सब आ वल अर्द, जो कुछ सातों आसमान और जमीन में है वो सब अल्लाह की तस्वी करता है। वह मन फी हिन, जमीन और आसमान के दरमियान में कौन है, जितनी मखलूकात हैं, वह मन फी हिन और जो कुछ इनके दरमियान में है वो सब तस्बीह करते हैं। वह इन मिन शई इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, सब अल्लाह की हम्द करते हैं, वलकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम्हें उनकी तस्बीह समझ नहीं आती। सब कॉन्स्टेंटली अल्लाह की हम्द करते हैं। तो अर्रहमान ने बता दिया कि हर एक को कॉन्शियसनेस है, तमाम मखलूकात अल्लाह की फरमाबरदारी करती हैं, तमाम मखलूकात अल्लाह की हम्द करती हैं। सूरह राद में भी आता है, वयुसब्बिहु रअदु लिहम्दिही, जो बिजली की कड़क है वो भी अल्लाह की हम्द करती है। वयुसब्बिहु रअदु बिहम्दिही, बिजली की कड़क भी अल्लाह की हम्द करती है। तो ये मुख्तलिफ एंगल हैं जो यस्जुदान के अंदर लिए गए, डायरेक्टली सूरज, डायरेक्टली सितारा और दरख्त कैसे सजदा करते हैं। और इस मफहूम में आपको दो मफहूम मैंने मुफस्सरीन के और बता दिया कि वो कहते हैं कि इन दो को मेंशन करने का मतलब ये है कि इनके दरमियान में जो कुछ है वो भी सब अल्लाह को सजदा करते हैं, वो भी सब खत्म होने वाले हैं, इन द सेंस दुनिया अल्टीमेटली खत्म होने वाली है। इमाम उलूसी लिखते हैं कि बास दरख्तों का सजदा करना आपको कैसे नजर आता है विजिबली, जब सूरज इस एंगल से आता है कि उसका सजदा उसका उसका साया पूरा जमीन पर पड़ रहा होता है। तो जो सूरज का साया पूरा जमीन पर पड़ता है, इमाम उलूसी के मुताबिक वो कहते हैं ये दरख्त का आपको यस्जुदान की कैटेगरी में आना नजर आता है। और जो नज्म है सितारा, इमाम उलूसी कहते हैं शूटिंग स्टार, सितारा गिरता है ना, शूटिंग स्टार असल में यस्जुदान की प्रैक्टिकल कैफियत है, जिसमें आपको नजर आता है कि ये सजदा कैसे अल्लाह के सामने करता है। वल्लाहु आलम उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हर मखलूक कॉन्स्टेंटली सजदे में है, हर मखलूक अपनी नेचर को फॉलो कर रही है, तो फिर इंसान क्यों भटक रहा है, इंसान इबादत से बार बार अपनी जान क्यों छुड़ाता है। आगे एक और क्रिएशन की मिसाल जो है वो दी जा रही है, और वो है वस्समाउ रफअहा ववदअ अलमीज़ान, आसमान को उसने बुलंद किया और मीजान कायम कर दिया। आप देखें फिर आयत शुरू कैसे हो रही है, वाव से शुरू हो रही है। क्या मतलब है, कंटिन्यूएशन चल रही है उन तमाम एंटिटीज की जिसको अल्लाह ने कुरैश को दिखाया कि इनसे बड़े मोजज़े तुम्हें और क्या चाहिए। यू वॉन्ट समथिंग टू सी, कि तुम देखो और मानो, तो तुम्हारे तो जिंदगी में कई ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिसको तुम देखो और मानो। वाव इज द कंटिन्यूएशन पिछले कॉन्टेक्स्ट का। वस्समाउ और आसमान, रफअहा उसने बुलंद किया उसको। अब आप यहां पर एक चीज देखें, आप में से जिन लोगों को ग्रामर आती है उनको तो मजा आएगा, जिनको नहीं आती उनको भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो इंसेंटिव होना चाहिए। जस्ट अ सिंपल थिंग, चले मैं आपको पहले उर्दू की बात से बताती हूं। मैं कहूं मैंने लिखा कॉपी पर, मैंने लिखा किस पर, कॉपी पर, ये एक जुमला मैंने बोला। अब मैं कहूं कॉपी पर मैंने लिखा, दोनों में फर्क है, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो गया ना। बाज़ोकात आप और मैं एक्सप्रेशन बदलते हैं, बाज़ोकात जुमले का आप और मैं आम जुबान में भी कंस्ट्रक्शन बदलते हैं, बाज़ोकात हम साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बाद में एम्फेसिस ला सकें। मैंने लिखा कॉपी पर, जुमले के एक अंदाज मैं आपको बता रही हूं कि मैंने कॉपी पर लिखा, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। अब मैं बोल रहा हूं अपने एक्सप्रेशंस के साथ, जिसमें मैं कहूं कॉपी पर मैंने लिखा, जैसे मैंने कोई ऐसा काम किया जो मैं कभी करती नहीं थी। तो ये एक अंदाज होता है जिसमें जुमले की जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाता है और उसको रीअरेंज किया जाता है, वो यहां किया गया है इस आयत में। पीछे आपको पेयर मिल रहा था, सूरज चांद नजम शजर, यहां आया वस समाउ, और फिर अगली चीज को अगेन वाओ के साथ और आगे पुश कर दिया गया। अरबी में जुमला क्या होता, अगर किसी को बहुत बोरिंग लगेगा तो प्लीज हाथ उठा दीजिएगा, मैं वहीं ब्रेक्स लगा दूंगी। किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा, दैट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी में होना चाहिए था रफा, उसने बुलंद किया, असमा आसमान को, दैट्स अ सिंपल सेंटेंस, उसने आसमान को बुलंद किया। बट अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा, अल्लाह ने कहा असमा वसमा आ, और आसमान को रफा बुलंद किया, हा उसको, यहां कहां जा रहा है, आसमान की तरफ। सो दिस इज एम्फेसिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्फेसिस ऑन स्काई। अच्छा, फोगेट अबाउट सूरज, फोगेट अबाउट चांद, फोगेट अबाउट नजम, फोगेट अबाउट शजर, जस्ट लुक एट द स्काई। ये वाला इंपैक्ट है इस आयत में, उन चारों को छोड़ दो। चलो मुश्किल लग रहा है, बहुत फिजिक्स हो गई, सिंपल बात, आसमान को देखो। तो अरबी जुबान में यहां पर एक अंदाज को बदला गया है। आप में से वो लोग जिनको अरबी आती है प्लीज, बाकी लोग बेशक ना लिखें, परेशान हो जाएंगे। इसको कहते हैं इस फॉर्मेट को, जिसमें आपको एक्सप्रेशंस भी मिले, जिसमें आपको बात पर एम्फेसिस भी मिले, जिसमें जुमले की कंस्ट्रक्शन को भी बदल दिया जाए। तो अरबी में कहते हैं इसको अल मशगूल अन, अल मशगूल, मशगूल उर्दू में भी लिखते हैं ना, अल मशगूल अन हु आइन के साथ। यानी क्या बताया जा रहा है कि किसी बात को बहुत ओवर एम्फेसिस के साथ बयान करना, बहुत ताकीद के साथ बयान करना, वो एंगल आपको इस आयत में असमा के साथ मिल रहा है। ये हा जो है ये असमा की तरफ जा रहा है। अल्लाह ने आसमान जो तुम्हारे सरों पर बनाया है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। बाज़ोकात हम तर्जुमा पढ़ते हैं, हम कहते हैं इस रमजान में बड़ा काम करूंगी, मैं तिलावत भी करूंगी और मैं साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ूंगी। कभी तर्जुमा पढ़ के सिर्फ आपको ये इम्पैक्ट मिल सकता है? ये तो सिर्फ वो ग्लिम्स हैं तफसीर के जो मैं आपके सामने इस वक्त हल्के हल्के दे रही हूं। अदरवाइज देर इज अ ह्यूज ट्रेजर हर आयत के पीछे जो आपको मिलता है। दीज आर जस्ट लाइट ग्लिम्सेस, जिससे आपको पता चल रहा है कि इस कलाम में कितनी डेप्थ है। तो अल्लाह ताला ने यहां वाजे क्या किया कि मुशरिकीन को एक तरह से सख्त ताकीद के साथ बात कही जा रही है, छोड़ दो वो सब चीजें जिसकी तरफ तुम्हें देखने का और गौर करने का कहा जा रहा था, अपने सर के ऊपर आसमान को जरा गौर से देखो, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और जब इंसान देखता है और गौर से देखता है तो शायद उसकी अकल जो है वो थोड़ा सा उसको गौर करने पर लेकर आती है। मुशरिकीन को, कुरैश को समझ आया या नहीं आया, आप और मैं, साइंस आज बता रही है इतनी तरक्की के बावजूद, इतनी गैजेट्स बन जाने के बावजूद, इतनी सोफिस्टिकेशन इन्वेंशंस में हो जाने के बावजूद, वो कहते हैं आसमान का हम आज तक एज नहीं देख सके, इस स्काई का, इस असमा का कोई एज नहीं है। अरबी में समा कहते हैं वट एवर इज अपॉन योर हेड, असमा जो भी चीज आपके सर के ऊपर है, इसलिए आसमान को जो हमारे सरों के ऊपर है असमा, और इसकी जमा असमावात कहा जाता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आज भी हमें इस आसमान का एज नहीं मिला है। और वो कहते हैं, ये आपको साइंटिफिक थ्योरीज बता रही हूं, कहते हैं कि अगर इस कायनात का एंड, इसका एज मान भी लिया जाए कि कोई एज है, तो वो कहते हैं हमें ये नहीं पता कि उसके बाद क्या है। हबल टेलीस्कोप, ब्लैक होल, सारा कॉस्मिक बैलेंस, सारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सारी आपकी जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, और जितने डिजिट्स और जितने डेसिमल्स के साथ आपको उसकी सारी जो है वो डिग्रीज और वैल्यूज मिलती हैं, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट हेवन। नोबडी नोज के साथ दूसरा आसमान कैसा है, तीसरा कैसा है, चौथा कैसा है, पांचवा कैसा है, छठा कैसा है और सातवां कैसा है। दिस होल साइंस इज बेस्ड ऑन जस्ट ऑन द फर्स्ट हेवन। सिर्फ पहले आसमान की बात हो रही है, अभी दुनिया सिर्फ यहीं तक पहुंची है। खुद साइंटिस्ट कहते हैं अगर हम मान लें, अव्वल तो वो कहते हैं कि ये आसमान हमें इनफाइनाइट नजर आता है, हम इसका एज नहीं तलाश कर सके, लेकिन कुछ थ्योरीज में उन्होंने कहा कि अगर हम मान लें कि इसका एज है तो हमें ये नहीं पता कि इसके बाद क्या है, इट्स अननोन। बास थ्योरीज आई जिन्होंने कहा कि इसके बाद, इसके एज के बाद अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक और कॉस्मिक बैलेंस है, ये जो ब्लैक होल डिस्कवरी हुई है पिछले दिनों में, अगर आप इसको जाकर स्टडी करें, उन्हीं साइंटिफिक स्टडीज को आप स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा, वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम, मैं कोई यहां पर फतवा नहीं दे रही हूं, वल्लाहु आलम, हो सकता है ये ब्लैक होल एक एंट्रेंस हो सेकेंड स्काई की, दूसरा कॉस्मिक बैलेंस, उसका उसका भी ब्लैक होल हो, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा, वल्लाहु आलम। ये तो वो सारे मामलात हैं जो मुतशाबहात में हैं, जब तक कि अल्लाह इनको खोल ना दे, जब तक अल्लाह खोलना ना चाहे। हमारे पास, मुसलमानों के पास पढ़ने के लिए, हमारे पास फिजिक्स में आगे बढ़ने के लिए, हमारे पास कुरान और सुन्नत को कन्विक्शन के साथ थामने के लिए ऑप्शंस की कमी थोड़ी है। सिर्फ वो हाथ चाहिए जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस किताब को उठा सकें, सिर्फ वो दिल चाहिए जो यकीन करें कि जो इस कलाम में है वो हक है, सिर्फ वो मुसलमान चाहिए जो सिर्फ फर्ज 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 क्या है बस ये बता दें और बाकी से हमारी जान छुड़ा दें, वो सिर्फ इस फिक्र में ना हो, बल्कि वो एहसान के लेवल पर आगे बढ़ने की हर वक्त दौड़ में लगे रहें।